नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पटना में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। कहा, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बिहार ने स्वास्थ्य, ऊर्जा और डाक सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मरीजों का आभा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण के मामले में राज्य पूरे देश में पहले स्थान पर। और राज्य सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पटना में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। समारोह का आयोजन बापू सभागार में होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत देश और विदेश के कई जाने माने चिकित्सक और पीएमसीएच के पूर्ववर्ती विद्यार्थी भी मुख्य समारोह में मौजूद रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच से जुड़े विद्यार्थियों और चिकित्सकों को संबोधित करेंगी। ठीक गंगा नदी किनारे स्थित पीएमसीएच के 100 वर्ष पूरे होने पर संस्थान का यह शताब्दी वर्ष समारोह अतीत के पन्ने को पलटने का सुनहरा दिन होगा। अपने 100 साल के इतिहास में पीएमसीएच ने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चिकित्सक रहे डॉक्टर दुखन राम, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए हई और कई अन्य नामी गिरामी चिकित्सा रत्नों को उत्पन्न किया है। संस्थान की उपलब्धियों को देखते हुए पीएमसीएच को विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। 5500 करोड़ रुपए की लागत से इसे 5400 से अधिक बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अत्याधुनिक वाहन पार्किंग, हेलीपैड और कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इधर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर के अलग अलग जगहों पर 40 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर में आयोजित समारोह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी की। योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने बिहार के 75 लाख किसानों समेत देश भर के 9,80,00,000 लाभार्थी किसानों के खातों में 22,700 करोड़ रूपये से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भेजी। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी परिकल्पना है कि दुनिया की प्रत्येक रसोई घर में भारतीय किसान द्वारा उत्पादित कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए।
मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में मखाना पोर्ट के गठन की घोषणा की गई है, जिसका सबसे अधिक लाभ बिहार के मखाना किसानों को होगा।
इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को विभिन्न योजनाओं के लिए पर्याप्त राशि मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश में विकास की गति और तेज होगी।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आईटीआई के विस्तार की घोषणा की गई।
बिहार ने 3 सेवा क्षेत्रों स्वास्थ्य, ऊर्जा और डाक सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य ने इन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। एक रिपोर्ट।
बिहार मरीजों के आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक आभा आधारित स्कैन एंड शेयर सेवा से 2 करोड़ से अधिक टोकन बनाए जा चुके हैं। साथ ही 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR बनाकर राज्य ने देश में 4th स्थान प्राप्त किया है। वहीं उपभोक्ता सेवा के मानकों पर देश भर की बिजली कंपनियों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने ए ग्रेड हासिल किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग 2023-24 में कंपनी को ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह ग्रेडिंग उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट और निर्बाध बिजली सेवा प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा समय पर चिट्ठी पहुंचाने में डाक विभाग का बिहार सर्किल लगातार 3rd साल देश भर में पहले स्थान पर रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार बिहार सर्किल से 96% चिट्ठियों को निर्धारित समय पर पहुंचाया जा रहा है। पटना GPO से सबसे ज्यादा समय पर चिट्ठियां पहुंचाई जा रही हैं। सूची में 2rd स्थान पर संयुक्त रूप से बेगूसराय, सीतामढ़ी और पटना साहिब डिवीजन हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीक।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। और अब एक जरूरी सूचना।
आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_Patna से प्राप्त की जा सकती हैं।
अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी राशन कार्डधारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग निर्धारित समय सीमा तक करा लें। राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी जन वितरण की दुकान पर ePOS के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष 188,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2,339 करोड़ की 1,516 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
हर खेत के सिंचाई के पानी में उसमें हमारी राशि 2,339 करोड़ के आसपास में हमने राशि दी, जिसमें 1,561 योजनाएं हमारा उसमें पूर्ण होना है और हम करीब 1,87,195 हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने जा रहे हैं। उसी तरह से जल जीवन हरियाली में आज तक हमने 2,28,225 हेक्टेयर सिंचित किया है और चाहे पूर्ण भ्रमण उसका किया है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज पटना में पार्टी की प्रदेश स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कांग्रेस नेताओं से आम लोगों के बीच जाने की अपील की है। पार्टी की पटना जिला इकाई के नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने जनसंपर्क और जनसंवाद को दुरुस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव टी राजा आज बिहार शरीफ में आयोजित पार्टी की आम सभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के कार्यालय सचिव इंदु भूषण वर्मा ने बताया कि वे कल पटना में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। राजभवन की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालय को लगातार छठी बार यह दायित्व मिलने पर राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां के प्रति आभार जताया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार ओलंपिक संघ के मामलों की जांच के लिए तदर्थ समिति के गठन के निर्णय को खारिज कर दिया है। यह निर्णय भारतीय ओलंपिक संघ ने किया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने बिहार ओलंपिक संघ की याचिका पर यह फैसला सुनाया। राजेंद्र सेतु पर निर्माण कार्य को लेकर आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सेतु का सड़क मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस और अन्य अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। रेलवे द्वारा पटना और बेगूसराय जिला प्रशासन को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कांग्रेस राजद ने बिहार को बर्बाद किया मोदी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, मोदी का मिशन बिहार, नीतीश को लाडला सीएम बताया, कहा चारा खाने और महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार का हो रहा है विकास। प्रभात खबर ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, एससी की उपजाति संबंधी शब्दावली को बदलने पर विचार करे केंद्र। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पटना आगमन से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पटना में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। कहा बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। बिहार ने स्वास्थ्य, ऊर्जा और डाक सेवा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। मरीजों का आभा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण के मामले में राज्य पूरे देश में पहले स्थान पर। और राज्य सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।